ऐसा संगत प्यार से बोलिए, सत्संगत अभी आप संतों के प्रवचनों का आनंद ले रहे थे। हर किसी ने सतगुरु की महिमा का जिक्र किया और साथ साथ जो बम्बे समागम पे गए वो भी साथ संगत, उन्होंने भी जो वह नज़ारा देखा कि कैसे संगतें भरपूर सतगुरु के आशीर्वाद लेने के लिए जगह जगह से इकट्ठे हुए। तो आओ साथ संगत, जिनको ये प्रेम लग जाता है सत्संग, फिर वो तो खींचे चले आते हैं। दुनिया में एक हकीकी प्यार और इश्की प्यार दोनों माने जाते हैं, और जो हकीकी होता है उसको कोई झुठला नहीं सकता। संसार में तो प्यार बड़े करने वाले आए और चले गए, पर जिसका प्यार गुरु के साथ साथ संगत के साथ होता है उसी को ही प्यार माना जाता है। तो आओ साथ संगत, आपने संतों से अनेकों तरह की भावना श्रवण की, और आप ये भी बार बार सुनते चले आए निंदा के बारे, बखीली के बारे, अपने बगाने के बारे, घृणा के बारे, नफरत के बारे। और साथ संगत बाबा जी भी हर विचार में इन बातों को दोहराते हैं, साथ साथ हमें विशालता का संदेश और सद्भावना का और सहनशीलता का बार बार इन बातों को दोहराए चले जाते हैं। जितने भी संत संगत में आने वाले हैं, जो ध्यान से अपनी बातों को छोड़कर बाबा जी के विचारों की तरफ ध्यान देते हैं, वो भली प्रकार समझते हैं कि कोई भी ऐसी विचार नहीं होती जिसमें ये बातें न कही जाए। ये सत्संग बार बार क्यों दोहरानी पड़ती है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं। हम सत्संग कोई बात थोड़ी भी करें फिर देखो कितनी शैलशीलता हमारे अंदर है, पर आप जानते हैं कि जो जैसे दो इंसान आपस में बोलते हों, ऊंची नीची बातें करते हों, तो साथ संगत जो चुपचाप सुनता रहता है खड़े होकर, या उधर से किनारा कर जाता है, महानता उसी को मिलती है। जो बोलता चला जाता है उसको कभी महानता नहीं मिली, उसको तो बल्कि कहते हैं कि इसकी तो आदत ही बोलने की है, ये तो बोलता ही रहता है। तो सहनशीलता वाला ही बड़ा होता है। इसीलिए साध संगत हमें ऐसे ऐसे आदेश दिए जाते हैं, पर साथ से हम भी क्या करें, शुरू से ही ये बातें हमारे साथ लगी हुई है। शुरू से ही हम निंदा भी करते आए, दूसरे की बातें भी करते आए, वो ऐसी आदत सी बनी होती है को वो जाती नहीं है। इसीलिए सत्संगत बच्चों को बड़ा दर्जा दिया जाता है कि बच्चे जो सत्संग शुरू से ही सत्संगत में आने वाले, उनको सत्संगत ये उनके मन के ऊपर ऐसी मैल नहीं होती जो हमारे बड़े बूढ़ों के अंदर मैल होती है। क्योंकि हम जाने कहाँ कहाँ घूम के आए, ऐसी ऐसी जगह पे घूमे जहाँ केवल नफरत ही सिखाई जाती है, घृणा ही सिखाई जाती है, लालच ही सिखाया जाता है, लोभ ही सिखाया जाता है, किसी को कुछ मानना ना ये भी सिखाया जाता है। तो सत्संग केवल यही दर है, यही हमारा सतगुरु जो सत्संग हमें इन बातों से परहेज करना बताता है कि आपने इन बातों में नहीं पढ़ना, ये बातें सब दुख देने वाली हैं। कभी कभी सत्संग ऐसी बात भी होती है, मांग तो मांगते होते हैं कि दातार कृपा कर, हम किसी की निंदा ना करें, थोड़ी दूर दूर देखते हैं तो वो ही निंदा में ही पड़ा होता है। फिर सत्संगत ऐसे भी आते हैं, महात्मा कहते हैं बाबा जी माता जी, इतने बरस के हम लगे हुए हैं, दुख भी है भूख भी है, सिमरन भी करते हैं सत्संग भी करते हैं, सत्संग ये दुख क्यों नहीं जाते? वो सत्संग इसीलिए दुख आते हैं कि हम गुरु के वचनों के ऊपर पूर्ण चलते नहीं। अगर हम जैसे सतगुरु हमें बार बार समझाते हैं उनके पुण्य के ऊपर चले तो सत्संग जी अगर बड़ा भी दुख आता है पहाड़ जैसा तो राई बन के निकल जाता है। क्योंकि शरीर है, इसको दुख सुख तो थोड़ा बहुत होता ही है, पर ये हंस के संत जो है इसको टाल देते हैं। जिसकी सत्संग तार गुरु के साथ जुड़ी होती है तो आओ सत्संगत, ये तो जितना जितना हम एक दूसरे से प्यार करते हैं हमारी आत्मा शांत रहती है। अगर घृणा करते हैं तो कल्पना ही कल्पना, आप भी कल्प रहे होते हैं और जिसकी बातें करते हैं उसको भी कल्पा रहे होते हैं। चलो वो तो अपने घर बैठा हुआ है, उसको क्या पता मेरी कोई घृणा कर रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, पर हम खाम खा ही कल्पते रहते हैं, ना लेना ना देना। तो आओ साथ संगत, ये तो संगत करने का तो यही लाभ होता है कि हम गुरु के आज्ञा अनुसार चलें। क्योंकि पढ़ते तो जरूर है सुख कितने ना मिलता जी, सुख सतगुरु की शरणी, इसमें शक नहीं, सतगुरु के चरणों में तो सुख ही सुख है, इसके पास तो भंडारे सुखों के भरे हुए हैं, पर जो हमारा कर्म है वो दुख ले लेता है। जो हम सत्संग चाहे जान कर करें चाहे अनजाने में हो जाए वो हमारे सामने दुख बन के आ जाता है। तो आओ सत्संगत, जैसे आप ही पढ़ते हैं कि देखियो तेरे प्यारा दी दुनिया, सत्संग अगर इस दुनिया में जिसमें हम बैठे हुए हैं इसमें प्यार नहीं तो दुनिया के और किसी हिस्से में भी आपको प्यार नहीं मिलेगा, ना ही सत्संगत सुख महसूस करोगे। क्योंकि हम उसी दुनिया से निकल कर आए और रहते भी दुनिया में ही हैं, वो हम भली प्रकार जानते हैं। अगर अपने पहले जीवन की तरफ झात डाल कर देखें तो फिर पता चलता है कि जमीन आसमान का फर्क है। कभी कभी हम तंग दिल्ली में कह देते हैं कि क्या मिला हमें यहाँ से, सत्संग यहाँ से नहीं मिला तो और कहीं मिल भी नहीं सकता। क्योंकि आप जानते हैं कि हर समय में एक ही पूर्ण सतगुरु महात्मा होते हैं, इसमें शक नहीं, गुरु तो बड़े मिल जाएंगे आपको, कदम कदम पे गुरु मिलेंगे, शिष्य कम मिलेंगे गुरु ज्यादा मिलेंगे, पर सतगुरु दुनिया में एक ही मिलेगा जो सत्संग हमारे जीवन को सवारने वाला होगा। बिगाड़ने वाले तो बड़े मिल जाते हैं, सत्संग लायक माता पिता तो सत्संग वही होते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बेटा बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना। तो सत्संग तो वही कहते हैं कि जो बच्चों के जब ये काम शिक्षा आती है तो सब कहते हैं कि वाकई इनके माँ बाप ने कितनी अच्छी बच्चों को शिक्षा दी, ये सबसे प्यार करते हैं, बड़ी निम्रता से बोलते हैं, चाहे इनके पास छोटे आए चाहे बड़े आए, एक एक के लिए इनके अंदर दर्द है, प्यार है। तो सत्संगत अगर कोई ऐसा होता है वो हर वक्त ही बच्चा कहता रहे कि वो अच्छा है वो नहीं अच्छा, वो से प्यार है उससे नफरत है, उसकी बातें है उसकी, तो सुनने वाले भी कह देते हैं कि माता पिता ने इनको अच्छी शिक्षा नहीं दी। इसी तरह सत्संग पूर्ण सतगुरु भी हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, अगर हम पूर्ण उसको अपने जीवन में ढाल लें तो सत्संग कितना आनंद सही वातावरण होता है। घर में रहें तो तब भी आनंद में होते हैं, कई बार जाएं तो फिर भी आनंद में होते हैं। हमारे पड़ोस रहने वाले वो भी सत्संगत खुशहाल रहते हैं। तो आओ सत्संगत, ये तो आगे सुनते थे कि महात्मा ने कोड़े जो रीठे थे मीठे किए हैं, पर सत्संग वो तो पता नहीं हमें, उस टाइम तो हम नहीं थे। मैं अभी की बात बताती हूँ, इसी तरह आगे भी शायद मैंने कई दफ़ा बताई होगी कि इसी तरह टूर करते करते बाबा गुरबचन सिंह, मैं शिमला सोलन कसौली और सत्संग इसी तरह टूर कर रहे थे। तो सोलन में सत्संगत ऐसे ही जब संगत का भोग पड़ा तो हम इसी तरह बैठे हुए, तो एक सत्संगत वहाँ संगत सुन रहे थे, जब भोग पड़ा तो कहने लगे, एक महात्मा से संत से कहने लगे भगत से कि आपके बाबा जी ने क्या किया, उन्होंने तो किसी ने कोड़े रीठे मीठे किए, किसी ने क्या किया, दो चार ऐसे बता दिया। तो सत्संगत बाबा जी तो वो संत भी चुपचाप बैठे, एक और बीच से बोल उठा, कहता तुझे नहीं मालूम के बाबा जी ने क्या किया, देख मैं ढाई मण का सासू, उसका जिस्म काफी भारी था, कहने लगा तेरे सामने तो ढाई मण का कोड़ा रीठा बैठा हुआ, तुझे अभी भी पता नहीं चला, तू मेरे ही मोहल्ले में रहता है, मैं किसी को अपने दरवाजे के आगे जो निकलता था उसको खांसी भी कार के निकलने नहीं देता था, और मैं गाली के बगैर किसी से बात नहीं करता था, अभी भी तुझे यकीन नहीं आया, जाके पूछ लो मेरे मोहल्ले वाले से, मैं तो वही हूँ, अभी किसी को कुछ कहा है, ये कोड़ा रीठा मीठा नहीं किया तो और क्या किया है। तो आओ सत्संगत, ये तो उनको ही ये बातें अच्छी लगती हैं, जो सत्संगत वो अपने जीवन को उन बातों के ऊपर चलाता है। तो आओ सत्संगत, ज्ञान की तो अभी कमी नहीं है, आप सभी जानते हैं कि दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं रहा जिसमें सत्संग ये आपका ज्ञान से सच्चाई फैल ना चुकी हो। किसी कोने में भी दुनिया में चले जाओ, आपको संत महात्मा भगत जरूर वहाँ मिलेंगे। सत्संग जरूरत तो अभी ये है कि जिस जैसे कहा है कि हो संबल थक्की जी शो कदे ना बोले कोड़ा, सत्संग संबल संबल कर पग रखना है, पाँव रखना है कि बाबा जी कभी हमारे किसी कर्म पे बोल पे कभी नाराज ना होए। हम अपने गुरु को खुश रखना है, जिसने भी अपने गुरु को खुश रखा है सत्संग के नाम आज हम लेते लेते थकते नहीं, चाहे हनुमान था चाहे भीलनी थी, चाहे सत्संग सुदामा था, जितने भी चाहे कबीर हुआ, जितने भी भगत आप रोज ही उनके नाम सुनते हैं। उन्होंने अपने गुरु को मनाया रिझाया और गुरु को खुश रखा। सासन बुल्ले की भी बात आप सुनते हैं कि एक दफा इसी तरह महाराज सिंहासन पे बैठे हुए तो सासंगत गुरु बैठे हुए इराई तो सासंग तो बुल्ले ने जब देखा ऐसे ही जैसे आप भी सासंगत जैसे कहा है कि मन गुर के आगे नाच। वो किसी के शरीर भी नाचते हैं, मन तो हर किसी के नाचते होते हैं। जैसे मीरा ने भी घुंघरू डालकर पाँव में जगह जगह गली गली में नाच नाच कर बताया गुरु हमें पूरन गुरु मिला है। तो सत्संग इसी तरह किसी टाइम कोई संत ऐसे अपने महात्मा के आगे नाच रहा था तो वो हंस रहे थे मुस्करा रहे थे। तो बुल्ला सत्संग ध्यान से देखता रहा कि ये तो शायद नाचने पे खुश होते हैं। तो सत्संग जाकर तो वेसवा के द्वारे पे जाकर नाच सीखा, घुंघरू बांध कर नाच सीखा कि मेरा गुरु किसी तरह भी खुश रहे। तो सत्संग जब उधर नाच सीख कर आए तो कुंगट सा निकाल कर तो नाचना शुरू कर दिया। जब सत्संगत सतगुरु बैठे हुए सिंहासन पे वो हंसने लगे खुश होने लगे तो कहने लगे तू बुल्ला है? तो कहने लगे नहीं महाराज मैं पुल्ला था, मुझे नहीं मालूम था कि आप ऐसे खुश भी होते हैं। तो आओ सत्संग भगत तो जिस ढंग से भी जो भी अपनाना चाहे सत्संग वो कहते हैं कि ऐसा ढंग अपनाए जिससे खुश हो मेरा सतगुरु, खुश होगा तो आशीर्वाद मिलेंगे, खुश होगा तो सत्संग हमें खुशी मिलेगी। अगर सत्संग हम सतगुरु के, मुझे याद है बाबा अवतार सिंह कहा करते थे कि सतगुरु की कालगी जो है वो कभी भी सुख नहीं दे सकती, नुकसान तो ज़रूर करेगी सुख नहीं दे सकती। तो आओ सत्संगत, क्योंकि हम तो शुरू से ही सुनते आए कि जोड़ने का काम ही करना है। सत्संग कल भी मैंने फरीदाबाद में सत्संगत बताया कि दातार की इतनी कृपा हुई कि सत्संगत बचपन में बड़ी लगन थी कि जिंदगी में कोई ऐसे महात्मा ऐसे गुरु आए जो हमें निराकार प्रभु से जोड़े, जैसे आगे भी भगत जुड़े। तो आओ सत्संग बड़ी चाहना थी। तो इसी तरह जब बाबा बूटा सिंह के भी दर्शन हुए पहले, पर वो थोड़ा सा ही समा हुए, सासुन ने पर इतने आशीर्वाद दिए, बिल्कुल ही मैं छोटी जई थी तो सत्संग इतने आशीर्वाद दिए जो सत्संग मेरा ख्याल है कि वो आज ही जो आपके सामने मैं बैठी हुई हूँ ये उनके आशीर्वादों की बदौलत है। तो इसी तरह उसके बाद शहनशाह बाबा अवतार सिंह सत्संग भक्ति तो मैंने मांगी, मांग के ली कि वो इतने भागों वाले लोग थे जिनकी याद में गुरु पीर आए, क्या हमारी याद में नहीं आएंगे, हम इसी तरह निभागे ही चले जाएंगे। तो सत्संग जैसे कहा कि सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माए पठाया। तो सत्संग ये पुकार सुनी गई पर सत्संग जिसले भक्ति तो मांगी पर सत्संग तो इतनी भक्ति मुश्किल सी मिली। सत्संग शहनशाह के टाइम पे बाबा अवतार सिंह से जब ज्ञान हुआ तो सत्संग वो आप सब जानते ही हैं, रोज ही उन बातों को दोहराते हैं कि सोरा साहब के रूप में आ गए। तो हुन सत्संग तो वो भक्ति इतनी हो गई कि मैं तो आँख भी ऊँची करके नहीं देख सकी। तो सत्संग कभी कभी ऐसे सोचती थी अगर कोई मेरे से पूछेगा कि शहनशाह की शक्ल कैसे थी तो मैं वो भी नहीं बता सकूंगी, फोटो को देखती रहूं कि कोई बताए तो मैं पूछे तो मैं बता तो सकूं। पर सत्संग दातार ने कृपा की, अपनी भक्ति आप ही करा ली। इसी तरह सत्संग फिर समा बाबा गुरबचन सिंह का, वो पति के रूप में आप जैसे रोज ही कहते हैं, फिर सत्संगत वो भक्ति में बोलूं अभी क्या बनेगा, कोई सवाल जवाब हो जाते हैं, कोई बातचीत हो जाती है, फिर यही अरदास करूं कि वो मेरी भक्ति बरकरार रहे, मैं भक्ति को पहल देती रहूं तो सत्संगत फिर अच्छी ज़िंदगी निभेगी। वो भी आपने निभाई, फिर अभी साध संगत वो भक्ति बेटे के रूप में आ गई, तो साध संगत फिर भी यही आपके चरणों में अरदास करती हूँ कि दातार कृपा करना के ये भक्ति को ही पहल देती रहूँ। वो तो जो रिश्ता है वो तो है ही है, और रिश्तों को मान कर तो साध संगत कभी भी सुख नहीं मिलता। हाँ, अगर भक्ति करती रहूँगी गुरु जानकार, जैसे गुरु जनाया गया है, जो तो आ जुगतो आ सा काया फेर पलटिए, ज्योति भी वही है जुगत भी वही है, तो साध संगत सिर्फ ये शरीर बदल जाते हैं पर साध संगत कामधेन होती है। यही अरदास यही प्रार्थना है कि आप यही वरदान देते रहो कि इसी तरह ये साध संगत भक्ति चली बेदाग होकर साध संगत ये अंत श्वासों तक साध संगत ये निभ जाए, तभी साध संगत इस भक्ति का स्वाद है। नहीं तो साध संगत वो तो ऐसे ही स्वाद है कि जैसे कोई गन्ने के खेत में भाग के निकल जाए तो साध संगत कोई पूछे कि गन्ना कैसे था, मीठा था फीका था, वो क्या बताएगा, उसने गन्ने का रस ही नहीं लिया। इसी तरह जिसने भक्ति का रस नहीं लिया, केवल कानों का रस लिया है, साध संगत वो क्या बताएगा भक्ति क्या चीज होती है। तो आओ साध संगत यही अरदास यही प्रार्थना करें कि दातार कृपा करना, ये जैसे ही तेरे दर पे लगे हैं अंत श्वासों तक, काफ़ी तो बीत गई है, थोड़ी सी जो रह गई है वो तेरे दर पे निभ जाए। सत्संग जी, धन्यवाद।